आज के एपिसोड में मेरे साथ है एक ऐसे एथलीट जिन्हें स्कूल से रेस्टिगेट कर दिया गया था। उनको अपनी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो एक इंटरनेशनल एथलीट है। कराटे और ताइक्वांडो में गोल्ड मेडलिस्ट, कूडो में नेशनल चैंपियन और कूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप, टोक्यो जापान में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके, गोल्डन बॉय ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से फेमस सोहेल खान। आपका दमरदो सचान शो में बहुत बहुत स्वागत है सर।
बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड इन दिस एपिसोड।
सर, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप इस स्पोर्ट के बारे में बताइए, कूडो के बारे में बताइए।
सो व्हेन वी से कूडो, कूडो इज अ ब्यूटीफुल स्पोर्ट। इट्स अ फुल कॉन्टैक्ट मिक्स मार्शल आर्ट। वी कैन आल्सो से इट्स अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट। आज के जमाने में हम देखते हैं कि कराटे होता है या टाइक्वांडो होता है या बॉक्सिंग होता है, रेसलिंग होता है,
जी
उसके मिक्स फॉर्म को हम मिक्स मार्शल आर्ट बोलते हैं, जो एमएमए के नाम से, अगर आपने कभी यूएफसी देखा हो या एमएमए देखा हो,
जी
उसका मॉडर्न वेरिएशन हम क्या कह सकते हैं, कूडो है, जिसके अंदर हम फुल कॉन्टेक्ट फाइट्स तो करते ही है, बट एट द सेम टाइम हम सेफ्टी प्रिकॉशंस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। सो
ओके
दैट मीन्स इन कूडो वी यूज पंचेस, किक्स, एल्बोज, नी हिट्स, ग्राउंड फाइट, एवरी थिंग, वट एवर वी डू इन अ स्ट्रीट फाइट और इन अ एमएमए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ देयर सेफ्टी। मतलब सेफ्टी से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। इट्स अ स्पोर्ट, इट्स अ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स इन इंडिया एंड इन मेनी डिफरेंट कंट्री एज वेल। सो कूडो इज अ ब्यूटिफुल स्पोर्ट, आई कैन से।
या सो सर, आपकी कूडो में जर्नी किस तरह से शुरू हुई, आप इस स्पोर्ट में कैसे आए?
एक्चुअली मेरा स्पोर्ट में आया, आई फर्स्टली स्टार्टेड विथ कराटे इन व्हेन आई वाज इन फिफ्थ ग्रेड। मेरी कूडो की जर्नी आई कैन से तभी स्टार्ट हुई थी जब मैंने कराटे से स्टार्ट किया था। अल्टीमेटली पूरे ही मिक्स, कोई भी आर्ट हो, मिक्स मार्शल आर्ट का, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो रेसलिंग हो, चाहे बॉक्सिंग हो, वो अल्टीमेटली एक ही फॉर्म कहेंगे हम उसको, मिक्स मार्शल आर्ट के फॉर्म में। तो आई स्टार्टेड विद कराटे व्हेन आई वाज इन फिफ्थ ग्रेड। जब मैंने स्टार्ट किया तो आई आल्सो वॉन मेनी स्टेट एंड नेशनल चैंपियनशिप एज वेल। बट एक कहते ना, मन में थोड़ा सा एक चीज क्या रहती थी, जब मैं कराटे खेलता था तो मेरे को एक चीज ये लगती थी, व्हेन आई यूज टू प्ले कराटे इज अ सेमी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट। जिनको नहीं पता सेमी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट का मतलब, मतलब कराटे में हम कभी अपने अपोनेंट को एक्चुअलिटी में कभी मारते नहीं है, वी जस्ट शो के जस्ट दैट वी आर हिटिंग। लाइक फॉर अ बॉलीवुड फाइट, बॉलीवुड में कभी अपने अपोनेंट को वो मारते नहीं, बट दे शोज लाइक कि दे आर हिटिंग अ पंच
जी
और दे आर हिटिंग अ किक। सो इट्स अ सेमी कॉन्टेक्ट स्पोर्ट। आफ्टर दैट आई ज्वाइन टाइक्वांडो। टाइक्वांडो इज ऑल्सो अगेन ब्यूटिफुल स्पोर्ट ऑफ मार्शल आर्ट, बट द ओनली थिंग लैकिंग इज आई थिंक टाइकोंडो में सिर्फ हम किक्स यूज करते थे, उसमें हम पंचेज नहीं कर सकते थे, थ्रोज नहीं कर सकते थे, ग्राउंड फाइट नहीं कर सकते थे। तो उसके बाद मेरे जो कोच थे डॉक्टर मोहम्मद एजाज खान सर, उन्होंने एक स्पोर्ट को इंट्रोड्यूस किया मेरे से, द स्पोर्ट्स कॉल्ड कूडो, इट्स अ फुल कॉन्टैक्ट मिक्स मार्शल आर्ट, और उसके अंदर फुल कॉन्टैक्ट पंचेज भी है, किक्स भी है, थ्रोज भी है, स्लैम्स भी है, ग्राउंड फाइट भी है, और एट द सेम टाइम सेफ्टी भी है।
जी
क्योंकि व्हाट आई फील नाउ डेज इज पेरेंट्स आर मोस्टली एंड मेनली वरीज अबाउट द पर्सन और हिज चाइल्ड और हर सेफ्टी पे पहले इंपॉर्टेंस देते हैं वो,
जी
कि मेरे बच्चे को मैं मार्शल आर्ट सिखा तो रहा हूँ बट मेरे बच्चे को चोट नहीं लगनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा कॉल था। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड विद कूडो, कि इट्स अ न्यू स्पोर्ट इन इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्पोर्ट। बिल्कुल एमएमए का फील इस चीज में आता था ना, एंड इट ऑल्सो बीन रिकॉग्नाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। सो देन आई स्टार्टेड विद कूडो
ओके
प्रोफेशनली।
तो सर, जैसा कि आपने बताया कि करेंटली लोगों का, पेरेंट्स का स्पेशली कंसर्न ये होता है कि बच्चे की सेफ्टी से कंप्रोमाइज ना हो, तो आपके पेरेंट्स का क्या टेक था इस पर, वो किस तरह से सपोर्ट करते हैं आपको?
पेरेंट्स का सपोर्ट तो सर हमेशा से ही रहा है, आफ्टर द रेस्टिगेशन एंड ऑल, आपने बताया जैसे रेस्टिगेट का भी, उसके बाद से जो सफर था वो बहुत ही शानदार मैं अपना मानूंगा, क्योंकि किसी एक ऐसी परिस्थिति से निकलने के बाद हम किसी मुकाम पर पहुंचते हैं तो आई थिंक सबसे ज्यादा जो खुश होते हैं वो आपके पेरेंट्स ही होते हैं।
जी,
तो पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा से ही है, हमेशा रहेगा, और काइंड ऑफ कभी उन्हें ऐसा फील नहीं होने दिया कि लेट गो कर रहे हैं, कि बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है तो नहीं, इसके अलावा चीजें स्पोर्ट्स से कुछ नहीं होगा। दे ऑलवेज कीप ऑन मोटिवेटिंग मी कि अच्छा है, करो, कीप गोइंग, काइंड ऑफ थिंग।
ओके। तो सर मैं चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपको किस वजह से रेस्टिगेट कर दिया गया था।
एक्चुअली उस टाइम पे कुछ एक्चुअली आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज रेस्टिगेटेड, आई स्टार्टेड इन महार रेजिमेंट पब्लिक स्कूल, इट्स अ ब्रांच ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल। तो आप जानते होंगे आर्मी का जो डिसिप्लिन रहता है वही आई थिंक उन स्कूल्स में भी जो फॉलो होता था। एंड आई वाज वेरी नट्यूरियस काइंड ऑफ अ स्टूडेंट, मतलब आई वाज मतलब डूइंग मिसचीफ्स, बंकिंग द क्लासेस एंड मेनी मोर अदर एक्टिविटीज, जिसके कारण आई थिंक एक कोई इंसिडेंट हुआ था। उसमें मैं और मेरा फ्रेंड, और एक चीज बताऊंगा कि उस जिस जो इंसिडेंट हुआ था उसमें मैं उस दिन था ही नहीं उस इंसिडेंट में, बट आई वाज वन ऑफ द, कहते हैं ना, नॉटी स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो कहते हैं ना अगर कोई गलती की है तो इसी ने की है, काइंड ऑफ सिनेरियो। तो वन ऑफ माय फ्रेंड डन इट, बट विद हिम आई आल्सो गॉट स्टक, देन मेरा नाम भी आ गया एंड आई आल्सो वन इन्वेस्टिगेटेड फ्रॉम द स्कूल।
ओके सर। तो सर आप सागर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मैं वहां के लोगों के बारे में जानना चाहूंगा, वहां के लोगों का मोस्टली ऑक्यूपेशन क्या है?
सर सागर बहुत मैं कहता हूँ बहुत छोटा सा शहर है, बहुत प्यारा शहर है, और यहाँ का ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर आई थिंक से के मेनली प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में लोग ज्यादा बिलोंग करते हैं। दैट मींस फार्मिंग हो गया या थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर आई कैन से, बट नाउ डेज इट्स क्वाइट चेंजिंग काइंड ऑफ अ सिनेरियो। धीरे धीरे लोग ग्रो कर रहे हैं, तो प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर पे भी लोग शिफ्ट हो रहे हैं। सो आई कैन से इट्स अ ग्रोइंग सेक्टर काइंड ऑफ इन सागर है।
ओके सर। तो सर आपके आसपास के लोग क्या कहते थे कूडो के बारे में? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कहा हो कि कूडो में क्या ही रखा है, क्या फ्यूचर है इसमें, इससे अच्छा तो कुछ और कर लो?
यार ये पहले नहीं, आज तक लोग कई लोग कहते हैं जो जिनको भी मैं बताता हूँ, या कहते हैं ना ताने काइंड ऑफ थिंग। तो ये लोग तो अभी भी कहते हैं, बट वही वाली बात है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
जी
तो वो तो यही कहते हैं कि क्या है कूड़ों में, क्या ही कर लोगे। सो मतलब कहते हैं ना उनको गलत प्रूफ करना है, कहते तो कई लोग हैं
जी
जस्ट वर्किंग ऑन दैट डायरेक्शन कि आई कैन प्रूव ऑल ऑफ देम रॉन्ग एंड डू समथिंग फॉर माय कंट्री एंड माय सेल्फ फॉर एज वेल।
या सर, इंडिया में अगर आप किसी भी बच्चे से क्रिकेट के बारे में पूछेंगे तो वो तुरंत से बता देगा, लेकिन कूडो इतना फेमस नहीं है। हार्डली आपको कुछ लोग मिलेंगे जिन्हें पता होता है कि कूडो भी एक स्पोर्ट है। आपके अकॉर्डिंग क्या वजह है जिसके कारण कूडो इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है?
सर कूडो इंडिया में पॉपुलर के, मैं ये तो नहीं कहूंगा कूडो इंडिया में पॉपुलर नहीं है, बट कूडो इज अ न्यू स्पोर्ट इन इंडिया, आई कैन से दिस। जब मार्केट में कोई भी नई चीज आती है तो सब लोग उसके बारे में नहीं जानते,
जी
धीरे धीरे लोग जानते हैं। तो आई थिंक कूडो इन इंडिया हैज बीन स्टार्टेड इन 2012,
हाँ
सो अराउंड इन कूडो को अभी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 10 साल ही हुए हैं
जी
राउंड ऑफ फिगर में मैं बताऊं तो। और कूडो को लाने का जो श्रेय मैं देता हूँ, जो श्रेय है वो शिहान अक्षय कुमार जी के लिए और सो शिहान मेहुल वोरा जी के लिए, जिन्होंने ये कूडो जैसा ब्यूटीफुल स्पोर्ट इंडिया में स्टार्ट कराया,
जी
और उसके बाद कूडो स्पोर्ट को रिकॉग्नाइज कराया बाय स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, एंड आफ्टर दैट मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके थ्रू हमारे जो भी नेशनल एथलीट्स रहते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब में सीधा सीधा रिजर्वेशन मिलता है, सीधा सीधा स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू उनको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट और क्या स्टेट पुलिस, सब जगह पे रिजर्वेशन के थ्रू हमारे कई जो सीनियर एथलीट्स है वो ज्वाइनिंग एज अ इन स्पोर्ट्स कोटा, दे आर ज्वाइनिंग इन दैट सर्विसेज एज वेल।
ओके सर। सर, कूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप टोक्यो जापान में जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो आपके माइंड में क्या चल रहा था?
जब मैंने कूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो आई कैन ओनली फील कि आई जस्ट वांट टू विन द फर्स्ट मेडल फॉर द इंडियन कंटिजेंट. मेरा सोचना यही था कि व्हाट आई फील कि इंटरनेशनली जो हमारी टीम कूडो की जाती थी, उसमें आज तक कोई इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे तो आई थिंक कुछ लोग जीते भी है, एंड बट एट सच अ बिग प्लेटफॉर्म के वर्ल्ड चैंपियनशिप में डिफीटिंग सो मेनी पावर कंट्रीज लाइक फॉर रशिया, जापान, अमेरिका, अदर डोमिनेटिंग कंट्रीज एज वेल, तो उनको हराना और मेडल जीतना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती. तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कैसे भी करके मेरे को अपने देश के लिए मेडल जीतना है, और अभी भी मेरा वो सफर जारी है और मैं अभी भी उसी मुकाम में लगा हुआ हूँ 2025 की तैयारी में पेरिस के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए.
जी, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सर आपके साथ।
नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले फॉर गिविंग मी चांस टू रिप्रेजेंट कूडो विद ऑफ ऑल योर ऑडियंस एंड ऑल. तो ये बहुत बड़ा, क्योंकि आई व्हाट आई फील इज कि जो अभी आपने एक क्वेश्चन भी पूछा ना कि क्रिकेट को हर कोई इंडिया में जानता है, बट लाइक फॉर कूडो और फॉर एमएमए और फॉर कराटे एट सच लोग नहीं जानते. तो उसका एक रियलिटी व्हाट आई कैन से जो मीडिया कवरेज रहता है वो हमारे क्रिकेटर्स या क्रिकेट की तरफ ज्यादा ही रहता है,
जी,
कि हमारे जो ओलंपिक मेडलिस्ट भी लोग हैं उनका मेडल आने पे भी एक छोटी न्यूज बनती है, और एक दिन अगर एक रणजी ट्रॉफी में या कोई आईपीएल मैच में कोई 100 कर दे तो एक वो बहुत बड़ी न्यूज आती है, चाहे वो न्यूज चैनल्स हो, चाहे पीआर टीम हो, चाहे जो मीम पेजेस हो, उससे एक अलग इमेज, तो लोगों का एक जो परसेप्शन रहता है ना कि ये स्पोर्ट ग्रो कर रहा है. तो अगर जो मीडिया का रुझान थोड़ा इन स्पोर्ट्स के तरफ आएगा तो ये स्पोर्ट्स भी ग्रेजुअली बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे,
जी
और
बिल्कुल,
अल्टीमेटली मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस इज वेरी कंबाइंड थिंग आई कैन से. अगर आपका बच्चा या आपका स्टूडेंट या आपका भाई या आपका बहन अगर मार्शल आर्ट का कोई भी स्पोर्ट, आई एम नॉट सेइंग ओनली कूडो, आदर ही इज डूइंग कराटे, टाइक्वांडो, कूडो, जिजित्सु, बॉक्सिंग, रेसलिंग, एनी स्पोर्ट, अल्टीमेटली वो अपने आप को डिफेंड, कभी भगवान ना करे किसी के पास ऐसी सिचुएशन आए कि वो अपने आप को लड़ाई में उसको उतरना पड़े या किसी को बचाने के लिए उतरना पड़े, तो कम से कम वो बच्चा अपने आप को डिफेंड तो कर सके, या अपने पेरेंट्स को तो डिफेंड कर सके, अपनी बहन को तो डिफेंड कर सके, या बहन अपने भाई को या खुद को डिफेंड कर सके. तो दैट इज द मेन कॉज आई कैन से ऑफ मार्शल आर्ट इन इंडिया, एंड वी अल्टीमेटली नीड टू ग्रो दिस एनी हाउ. के आई ऑलवेज से आई एम वेरी प्राउड टू से वी आर वर्ल्ड चैंपियन इन क्रिकेट, नो डाउट. आई डोंट वॉन्ट के क्रिकेट की इमेज या क्रिकेट नीचे जाए और हमारे बाकी स्पोर्ट्स बढ़े. आई जस्ट वॉन्ट के क्रिकेट वहीं पे रहे और बाकी स्पोर्ट्स जो नीचे वो भी ऊपर आए. आई एम नॉट अगेंस्ट एनी क्रिकेटर और क्रिकेट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो जिस लेवल पे इंडिया में क्रिकेट को वैल्यू की जाती है उसी लेवल पे हमारे जो बाकी इंटरनेशनल एथलीट्स हैं उनको भी वैल्यू की जाए. लाइक आफ्टर विनिंग तो सब लोग जानते हैं, लाइक फॉर आफ्टर विनिंग गोल्ड मेडल इन ओलंपिक एवरीबडी नोज नीरज चोपड़ा, बट बिफोर दैट आई डोंट सी के एनीबडी नोज नीरज चोपड़ा, हु इज दैट गाय एंड ऑल ऑफ दिस.
जी, कोई नहीं जानता था उसके
तो
पास।
ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो ये मेडल आने के बाद में ही रहना चाहिए. ये जो टैलेंट सर्च कहते हैं ना, जैसे आज क्रिकेट के बारे में बात होती है कि अपकमिंग विराट कोहली, शुभमन गिल हो सकता है, या अपकमिंग रोहित शर्मा ये बच्चा हो सकता है, तो बाकी स्पोर्ट्स में क्यों हम ये चीजें नहीं कर सकते कि यार क्या पता ये अपकमिंग टैलेंट हमारा नीरज चोपड़ा हो, या ये अच्छा फुटबॉल खेलने वाला हमारा नीरज छेत्री हो, या ये लड़की जो अच्छी बैडमिंटन खेलती है हमारी पीवी सिंधु या सानिया नेहवाल हो. तो ये चीज ग्रो करना पड़ेगा, तब अल्टीमेटली हम स्पोर्ट्स में ओवरऑल स्पोर्ट्स में इंडिया को ग्रो कर पाएंगे. बट इफ वी से कि सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, तो क्रिकेट अकेले से कुछ नहीं होने वाला है. व्हाट आई सी ऑनेस्टली रिव्यू इज,
तो सर, आपकी लाइफ का अब तक का सबसे स्पेशल मोमेंट कौन सा है और क्यों?
मेरे लाइफ का वन ऑफ द स्पेशल मोमेंट आई कैन से कि जब मैंने जूनियर कुडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत देश के लिए स्वर्ण पदक जीता था फ्रांस के खिलाड़ी को हरा के, आई कैन से वो एक सुनहरा अवसर था मेरे लाइफ में, जो मैंने अपने मेमोरीज में और हार्ट में सजा के रखा है। और एक कितना प्राउड फीलिंग होती है हमेशा एज एन इंडियन अपने फ्लैग को ऊपर करना या उसकी शान को बढ़ाने में, तो आई
जी
फील के वन ऑफ द प्राउडेस्ट मोमेंट आई कैन से इज माय गोल्ड मेडल इन जूनियर कुडो वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 2017।
ऑल राइट सर, दैट्स रियली गुड। तो सर, कूडो एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें फिजिकली आपको बहुत फिट होने की जरूरत होती है, तो आप खुद को कैसे ट्रेन करते हैं? फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में बताइए।
सर ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, कुडो में फिजिकल फिटनेस और बाकी सब चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फुल कॉम्बैट बॉडी स्पोर्ट है। मतलब हम इसमें फुल बॉडी कांटेक्ट कर रहे हैं, सामने वाले को मार रहे हैं या सामने वाला हमें मार रहा है, तो फिजिकल फिटनेस तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है एज एन प्रोफेशनल लेवल आई एम टेलिंग। तो उसके लिए शेड्यूल फिक्स रहता है सर, जैसे लाइक फॉर आई एम गिविंग माई शेड्यूल, इन मॉर्निंग आई वेक अप एट अराउंड 7:30, आई डू माई वर्कआउट टिल 10 एंड 12, एंड एट इवनिंग आई गो फॉर अराउंड 4 o'clock, आई केम बैक अराउंड 7 or 7:30 PM। तो वो शेड्यूल फिक्स रहता है सर, आज हमारा जैसे बॉक्सिंग का क्लास है, कल रेसलिंग का क्लास है, अगर मैं मिक्स मार्शल आर्ट या कूडो की बात कर रहा हूँ, या आज हमारा जूडो का क्लास है, तो उस चीज पे एट द सेम टाइम हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन भी एट द सेम टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट पर्सन की लाइफ में। जितना हम वर्कआउट कर रहे हैं उतना न्यूट्रिशन भी इंटेक करें,
जी,
दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आई फील।
तो सर क्या कभी ऐसा होता है कि आपका ट्रेनिंग करने का मन ना कर रहा हो, कि लगता हो कि आज की ट्रेनिंग स्किप कर देता?
यार देखो अल्टीमेटली वही बात है कि अगर आपका कोई गोल है तो आपको सेक्रीफाइस तो करना ही करना पड़ेगा। इफ यू नीड टू बी अ रोनाल्डो आईएसएल से, तो यू कांट ईट द सेम व्हाट एवरीबॉडी इज ईटिंग, राइट? यू कांट डू व्हाट एवरीबॉडी इज डूइंग। अगर मेरे को रोनाल्डो बनना है या मेरे को विराट कोहली बनना है, तो मैं सब जैसा रूटीन फॉलो नहीं कर सकता, मैं सब जैसे 10 बजे सो के नहीं उठ सकता, मैं डेली चीट मील जाके नहीं खा सकता, क्योंकि आई हैव सम ड्रीम एंड आई जस्ट नीड टू फुलफिल इट। So I just need to work hard as much as I can. But आपने ये बोला ना कि कभी कभी ऐसे मन करता है कि ट्रेन ना करे, आज ऑफ ले ले, तो सर ये तो आना ही नहीं चाहिए आई फील के। कभी कभी ये कह सकता हूँ कि आपको इंजरी है, जो मेरे साथ कई बार होता है कि स्पोर्ट्स इंजरी है आपको, लिगामेंट में कभी लग गया है, आपका पैर घुटना प्रॉब्लम कर रहा है आज, या मसल खिंच गया है या मसल टियर हो गया है, तो व्हाट आई डू मतलब मैं ट्रेनिंग स्किप नहीं करता हूँ। इवन मैं अपने घर से जाता हूँ, ट्रेनिंग जो सेशन चल रहा है उधर जाके बैठता हूँ, मैं कुछ ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट सिटिंग एंड वॉचिंग वॉचिंग ऑल ऑफ द ट्रेनिंग, लोग क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, तो
जी
देट इज ऑल्सो गिव अ बिग इम्पेक्ट। पहली चीज आपका रूटीन नहीं टूट रहा है, दूसरी चीज आपके दिमाग में 1 घंटे या 2 घंटे वो चीजें चल ही रही हैं, बट एफ आई से के यार रेस्ट कर रहा हूँ, रेस्ट डज नॉट मीन कि आप घर पे सो जाओ, रेस्ट करते रहो, रेस्ट इज ऑल्सो कि आप अपने ट्रेनिंग जिम में जाओ या जहाँ पे आपका जिम है डोजो है उधर पे जाओ, और आप सिर्फ आधे घंटे का अगर आपका आज रेस्ट पीरियड है, तो आप सिर्फ जाके देखो लोग क्या कर रहे हैं, मैं कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता हूँ, ये मेरे से क्या चीज अच्छी कर सकता है, तो मैं से क्या चीज सीख सकता हूँ, तो ये एक चीज रहनी चाहिए। व्हाट आई फील इज के नाउ डेज एथलीट्स के जो मेरे को लोग बहाने सुनाते हैं, सर आज मेरे को घुटने में लगी है या मेरे को कंधे में कर में कंधे के बल गिर गया हूं, तो सर आज मैं नहीं आ पाऊंगा, तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि आपको कंधे में चोट लगी है, आज लोअर बॉडी एक्सरसाइजेस कर लीजिए आप, अगर अपर बॉडी में शोल्डर पे लगी हुई है तो लोअर बॉडी कर लीजिए, लेग्स पे लगी है तो अपर बॉडी कर लीजिए, और अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है मूवमेंट करने में, तो आप सिर्फ बैठ के देखिए क्या हो रहा है। लाइक फॉर वी गो फॉर द वॉचिंग मूवी ना, हमारे दिमाग में चीजें चलती हैं कि अब ये हुआ था अब ये हुआ था, वाई नॉट इन स्पोर्ट? हम अल्टीमेटली जो क्रिकेट के जानने वाले लोग होते हैं वो भी तो किसी अच्छे बैट्समैन की बैटिंग देखने जाते ही हैं, तो वाई नॉट अस? हम क्यों नहीं एज एन ट्रेनिंग एथलीट्स और एज अ एथलीट्स व्हाई नॉट वी गो फॉर एवरीडे क्लासेस जस्ट टू वॉच कि हम कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं. बिल्कुल.
तो सर एज यू सेड कि अगर हमें कुछ लाइफ में बड़ा अचीव करना है तो हमें कुछ सैक्रिफाइसेस तो करने ही पड़ेंगे.
बिल्कुल.
तो सर आप खुद को कंसिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए मोटिवेटेड कैसे रखते हैं? मैं जानना चाहूंगा कि आपका बिगेस्ट मोटिवेशन क्या है.
यार आई थिंक फॉर मी द बिगेस्ट मोटिवेशन आई कैन से इज माय कंट्री इंडिया. यार आई जस्ट नीड टू डू समथिंग फॉर माय कंट्री. कहते ना अगर आपका जवानी या आप अपने देश के लिए काम नहीं आ सकते किसी भी वे में तो फिर वो मतलब नहीं है. अल्टीमेटली यू आर ऑल्सो डूइंग योर ड्यूटीज जस्ट टू एम्पावर इंडिया राइट एंड अदर एथलीट्स एज वेल रिप्रेजेंटिंग इंडिया इट सच अ बिग प्लेटफॉर्म दे आर ऑल्सो डूइंग देयर ड्यूटी. इट्स अ ड्यूटी. मतलब ये कोई वो प्राइड वाली चीज आई डोंट सी के हमें रहना चाहिए यार. ये हमारी ड्यूटी है हमारे देश को आगे बढ़ाना किसी भी फील्ड में चाहे वो पढ़ाई में हो चाहे वो साइंस में हो चाहे टेक्नोलॉजी में हो चाहे स्पोर्ट्स में हो. इट्स अ ड्यूटी एंड आई फील के मेरे लिए मेरा देश सबसे बड़ा मोटिवेशन है आगे बढ़ने के लिए. आई फील दैट.
तो सर कूडो में मेंटल टफनेस कितने इंपॉर्टेंट होती है?
सर ऐसे कूडो में मेंटल टफनेस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. आई ऑलवेज से मतलब कि आपकी जो फाइट है उसमें अल्टीमेटली आपको दिमाग से ही लड़ना है. हाथ पैर तो आपको सिर्फ यूज करना है. क्योंकि इन फाइट यू आर जस्ट यूजिंग योर पंच एंड किक्स बट द ब्रेन गिविंग यू द इंस्ट्रक्शन के व्हेन टू हिट एंड व्हेन टू डिफेंड वो बहुत इम्पोर्टेंट है. और मेंटल टफनेस बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी स्पोर्ट में और स्पेशली कूडो और कॉम्बैट स्पोर्ट्स में तो है ही. क्योंकि अगर अपन दिमाग से कोई चीज नहीं करेंगे कहते ना एक्शन का रिएक्शन भी हो जाता है कभी कभी.
जी
हमने सामने वाले को एक कॉम्बिनेशन किया या पंच या किक हिट की सामने वाले ने दो आपको खींच के मारा तो आपने उतना मेंटल टफनेस रहनी चाहिए कि आप जितना उसको मार रहे हो आप खुद भी सह पाओ. सो दैट्स कम विद द कंडीशनिंग ट्रेनिंग ओनली. अगर आप ट्रेनिंग सिर्फ मारने की कर रहे हो पिटने की नहीं तो थोड़ी दिक्कत है. थोड़ी नहीं है किनसे बहुत दिक्कत है. सो दैट आई फील के मेंटल टफनेस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन कॉम्बैट स्पोर्ट्स. वेरी मच.
तो सर हमारी ऑडियंस को क्या टिप्स देना चाहेंगे आप जिससे वो मेंटली खुद को प्रिपेयर कर सके डेली लाइफ प्रॉब्लम्स सिचुएशंस के लिए?
पहली चीज तो व्हाट आई कैन से टू ऑल ऑफ योर ऑडियंस एंड कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हार ना मानना. हार ना मानने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. व्हाट आई सी इज हार कैसे नहीं मानना. आपसे कोई चीज नहीं हो रही है आप उसको कंसिस्टेंटली करते रहे आज नहीं तो कल तो होनी है बट एट द राइट डायरेक्शन. आपको एट द सेम टाइम ये पता भी होना चाहिए कि आपका बेस्ट है वो उस चीज में जा रहा है या नहीं जिसमें आपका मन लगता है या नहीं. तो आई फील के सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज है कि आपको पहली चीज तो चाहे वो मार्शल आर्ट हो चाहे मेंटल टफनेस हो जो मैं कूड़ों के उससे बोल सकता हूँ कि हम लोगों को जो पंचेस घलते हैं या किक्स पड़ते हैं कंडीशनिंग ट्रेनिंग में तो हम लोग यही मान के चलते कि अब तो मारना है सामने वाले को. अब उसने एक मारा तो हम कहते हैं ना ईंट का जवाब पत्थर से देंगे बट ओनली इन द रिंग.
जी
हाँ. तो मेंटल टफनेस बहुत इम्पोर्टेंट है. हार ना मारने हार नहीं माने बिल्कुल कोशिश करते रहे निरंतर कोशिश करते रहे सफलता जरूर मिलती है. यही मेरा अभी तक के जो मेरा अभी तक रहा है उससे यही मानना है सफर से.
तो सर अपार्ट फ्रॉम कूडो आपको क्या क्या पसंद है? आप अपना फ्री टाइम किस तरह से स्पेंड करते हैं?
सर अदर देन कूडो आई लाइव एक्सप्लोरिंग थिंग्स मतलब जैसे बंजी जंपिंग हो गया या ट्रैवलिंग. आई वेरी मच लव ट्रैवलिंग मीटिंग न्यू पीपल लिसनिंग म्यूजिक. तो मेरी बहुत सारी अलग अलग हॉबीज है जिसमें मेरे को घूमना बड़ा पसंद है. मेरे को एडवेंचरस चीजें बड़ी पसंद है. रॉक क्लाइंबिंग हो गया बंजी जंपिंग हो गया या ड्राफ्टिंग हो गया स्विमिंग हो गया और म्यूजिक भी, तो जो मेरा फ्री टाइम रहता है इन सभी में जाता है, चाहे वो ट्रैवलिंग हो चाहे वो म्यूजिक लिसनिंग हो, तो ये मैं यूटिलाइज करता हूँ अपने हॉबीज को देने में।
ओके सर, सर क्या आप मोटिवेशनल मूवीज या स्पोर्ट्स वाली मूवीज देखते हैं?
हाँ जी, मैं देखता हूँ मोटिवेशनल मूवीज भी, एक्शन मूवीज भी, बट स्पेसिफाइड नहीं है कि सिर्फ स्पोर्ट्स मूवीज देखता हूँ। इट्स अपॉन कि जो अच्छी मूवी है स्पोर्ट्स के बिहाफ पे, या कॉम्बैट स्पोर्ट या फिर फाइटिंग एक्शन मूवी है, तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। आई
तो सर आपकी फेवरेट मोटिवेशनल मूवी कौन सी है?
थिंक वन ऑफ माई फेवरेट मोटिवेशनल मूवी आई कैन से इज थ्री इडियट।
Created, okay. तो उसका सबसे
बट
अच्छा क्या लगा
इट्स
था
नॉट
आपको?
रिलेटेड विद द स्पोर्ट,
स्पोर्ट्स या
इट्स के हाँ इट्स नॉट
मोटिवेशनल?
रिलेटेड टू द स्पोर्ट, बट आपने बोला ना मोटिवेशन, उसमें सबसे बड़ी चीज ये थी कि जिस चीज में आपका मन लगता है आप वही चीज करो,
जी
तो बेस्ट थिंग आई कैन से उस चीज में, तो वो भी एक मोटिवेशन थी कि मतलब अपन सही दिशा पे हैं। व्हाट आई फील, मतलब व्हाट वी लव टू डू, एटलीस्ट वी आर डूइंग इट। वी आर नॉट रनिंग फॉर अ मनी, वी आर नॉट रनिंग फॉर अ फेम, वी आर नॉट रनिंग कि हमें प्राइवेट कंपनीज आके मेल करे और सैलरी ऑफर करे ये वो, बट व्हाट वी लव टू डू वी आर डूइंग दैट, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, इट्स लाइक मजा आ रहा है काम करने में, सो इट्स लाइक दैट ओनली।
जी तो एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में कि अगर आपको कूडो
जी
इंटरनेशनल फेडरेशन इंडिया कीफी का हेड बना दिया जाए तो आप क्या क्या चेंजेस करना चाहेंगे स्पोर्ट्स अथॉरिटी में या स्पोर्ट फैसिलिटीज में?
अगर मेरे को हेड बना दिया है मतलब स्पोर्ट्स उसका, तो मैं कोशिश करूंगा जो ग्रासरूट लेवल के एथलीट्स हैं, मतलब व्हाट आई फील के नाउ डेज जो हमारे ग्रासरूट, मतलब कुछ लोगों को तो कंपटीशन के बारे में पता ही नहीं चल पाते, कंपटीशन हो जाते हैं और उन लोगों के तक इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंच पा रही है कि कोई ऐसे नाम का स्पोर्ट है कूडो का, कोई टूर्नामेंट होने जा रहा है, सिलेक्शन होने जा रहा है। तो जो हमारे प्रॉपर ग्रास रूट लेवल के एथलीट होते हैं ना, जो रॉ एथलीट्स होते हैं हमारे, वो उसमें अपनी भागीदारी ही प्रस्तुत नहीं कर पाते।
जी
तो मैं एक चीज वो मतलब कहूंगा कि ऐसा रिफॉर्म आना चाहिए, नॉट फॉर ओनली कूडो, हर स्पोर्ट के लिए। आई थिंक क्रिकेट का तो रिफॉर्म, आई थिंक ऑलरेडी क्रिकेट का हो या रेसलिंग का रिफॉर्म हो, आई थिंक एवरी, जैसे कि क्रिकेट, क्रिकेट तो हर सिटी में कोई ना कोई खेलता ही होगा, ऐसा कोई सिटी या गांव या कस्बा नहीं होगा जहाँ पे कोई क्रिकेट नहीं खेलता,
जी
राइट। एट द सेम आई एम सेइंग फॉर द रेसलिंग इज जस्ट बिकॉज वी हैव एवरी अखाड़ाज इन एवरी रूरल एरियाज एंड रेसलिंग क्लासेज इन एवरी सिटीज, एंड दैट इज द मेन रीजन आर रेसलर्स आर डूइंग गुड इन ओलंपिक्स एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन।
जी
सो अगर हमारा जो कहेंगे ना, जो ये थोड़ा सा अगर रिवोल्यूशनरी काम अगर हमें करना के लिए आप बोले पूछेंगे ना, तो मैं यही कोशिश करूंगा कि जो ग्रास रूट लेवल के एथलीट्स हैं, जैसे कहते हैं ना टैलेंट सर्च होता है कि हम बच्चों को ऐसे ढूंढे, क्योंकि कुछ लोगों को तो जैसे आई हैव सीन इन मेनी गवर्नमेंट स्कूल देयर हैव लॉट मोर पोटेंशियल। आई जस्ट नीड टू शेयर वन स्टोरी विद यू।
या बिल्कुल
एक्चुअली आई गो, मैं एक स्कूल में जाता था, एक फ्री मार्शल आर्ट ट्रेनिंग कैंप लेने, फ्री ऑफ वुमेन कैंप, वुमेन सेल्फ डिफेंस कैंप गर्ल्स स्कूल में। तो वहां पे जो मैंने लड़कियों का पोटेंशियल देखा, वो अदर सीबीएसई स्कूल्स या इंटरनेशनल स्कूल्स में भी नहीं होगा। एज एन इंटरनेशनल एथलीट व्हाट आई हैव सीन, जो उनके पास रॉ पावर है, जो परिस्थितियों से वो गुजर के अपने आप से चीजें करा पा रही हैं और कर पा रही हैं जो स्ट्रेंथ के साथ, आई डोंट फील कि वो कोई सीबीएसई या और बड़े स्कूल के बच्चे कर पा रहे होंगे। तो उधर पे मैंने एक महीने का कैंप लगाया, जिसके अंदर मैंने आई थिंक चार या पांच लड़कियों को ट्रेंड किया एंड दे हैव वॉन नेशनल गोल्ड मेडल,
वाह सर, अमेजिंग.
एंड दे डोंट हैव, एंड दे डोंट हैव एनी सिंगल पेयर ऑफ शूज टू रन प्रॉपरली। उनके पास जूतों जूते नहीं थे कि वो रनिंग में जूते पहन के जा पाए, वो चप्पलों में आती थी वो लड़कियां। तो मतलब इतना हमारे इंडिया में टैलेंट का भरमार है, इट्स ओनली थिंग इज वी जस्ट नीड टू फाइंड द प्रॉपर पर्सन फॉर द प्रॉपर प्लेस।
जी
टैलेंट भरपूर है हमारे इंडिया में, जस्ट थोड़ी सी कमी है तो हम कह सकते हैं टैलेंट सर्च की,
जी
प्रॉपर रिकॉग्निशन की कि एक बार अगर हमारा कोई एथलीट अच्छा कर रहे हैं तो उनको और आगे बढ़ाया जाए,
जी
और अगर कोई हमारे जो न्यू एथलीट्स निकल सकते हैं जो टैलेंट सर्च हम उनको लेके आए, उनको ग्रो करने पे कोशिश करें। तो
जी
आई थिंक ये बहुत एक रिवोल्यूशनरी काम होना चाहिए इन इंडिया, आई फील।
या सर, लाइक आई रिसेंटली वेंट टू वॉच मूवी मैदान, तो उसमें भी इसी तरह का कुछ बताया गया था. इंडिया की फुटबॉल टीम जो थी, तो उसमें जो कोच थे हमारे, आई गेस 1962 और 1972 ओलंपिक्स की बात हो रही थी उसमें,
जी
तो उसमें जो कोच थे हमारे, वो ग्राउंड लेवल पर अलग अलग जगह, नॉर्मल छोटी छोटी जगहों से उन्होंने प्लेयर्स को इकट्ठा करा था और फिर टीम बनाई थी.
जी
तो उसमें ये भी दिखाया गया था कि जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो किस तरह से मैनिपुलेट कर देती है और उनको, कोच को ही हटा दिया जाता है. तो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट भी शायद इन्वॉल्व है इन सब चीजों में.
मैं गवर्नमेंट तो नहीं कहूंगा, बट जो हायर अथॉरिटीज रहती है, क्या है, सबको अपना अपना दिखता है। अगर मेरे पास कोई भी स्टूडेंट आ रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ मेरा बच्चा आगे जाए, अच्छा टैलेंट आगे ना ही जाए, मेरा बच्चा आगे जाए। और
जी
ये सोच बदलनी पड़ेगी अगर हमें देश को बदलना है तो, क्योंकि
जी सर. तो सर
जो हमारे छोटे रूरल एरिया से बच्चे आते हैं उनको इतना ज्यादा नॉलेज और इंफॉर्मेशन नहीं रहती है रूल्स के रिगार्ड पे। जैसे आपने अभी बोला ना, मूवीज में तो उनको हटा दिया गया, क्यों?
जी
क्योंकि उनको अपने राइट्स, जो कहते हैं ना उनके मूलभूत अधिकार हैं या जो रूल्स होंगे, वो उनको ठीक से पता ही नहीं होंगे कि हमें किस चीज पे आप फाउल दे रहे हो, किस चीज पे आप हमें बाहर कर रहे हो, मेरे को क्यों बाहर निकाल रहे हो। तो जब तक लोगों को ये चीज पता नहीं चलेगी उनके हक के बारे में, जब तक लोग अपने आप के लिए भी आवाज नहीं उठा पाएंगे, और जिनको पता है वो स्मार्टली उस चीज को बड़ा अच्छे से यूज करते हैं, जहां उनको नहीं करने चाहिए उधर पे भी।
तो सर एट लास्ट आप क्या स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे दम रदल से चांस शो की ऑडियंस को?
सर माय मैसेज इज टू, मेरा सर एक ही मैसेज रहता है सभी, आई थिंक माय जितना भी मेरे एपिसोड या इंटरव्यूज में, कि आप एक अच्छे एथलीट नहीं रहेंगे तो भी देश के लिए कुछ करेंगे, अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट स्टूडेंट नहीं रहेंगे तो भी आप अपने देश के लिए अच्छा करेंगे, बस आप एक अच्छे इंसान रहे जो सच और झूठ का फर्क समझे, सही और गलत का फर्क समझे, आंख बंद करके किसी चीज पे विश्वास ना करे, थोड़ा सा फैक्ट चेक करे, आंख बंद करके किसी भी पर्सन और किसी भी कहूंगा के अथॉरिटी पे विश्वास ना करे। तो दैट इज द मेन मैसेज आई जस्ट नीड टू गिव टू ऑल द ऑडियंस अराउंड द वर्ल्ड।
All right, sir. So that's the end of our today's episode. Thank you so much, sir, for your time and everything.
नहीं, रियली लवली टॉकिंग टू यू ब्रदर, एंड होप वी मीट यू सून।
या डेफिनेटली सर.
डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली, लव टू टॉक टू यू ब्रदर, लव टू
सर, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग टूर्नामेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज सर.
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच सर.
ओके, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे।
सेम टू यू सर. थैंक यू.